हेलो गाइस,
व्हाट इज अप।
मेरा नाम है रोहित
और मैं हूं आयुष।
WWE हो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग,
ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट,
रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला,
क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा।
वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आपको पता है जो हाइप है रोमन रेंस के सिंगल्स मैच की तरफ, जो कि कोडी रोड्स के साथ उनका होने वाला है रेसलमेनिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो रोमन रेंस का एंड है, मतलब कि वो चैंपियनशिप हार जाएंगे। तो हमको लगा रेसलमेनिया का टाइम है, रोमन रेंस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, तो एक डेडिकेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है जहाँ पर हम रोमन रेंस के रेसलमेनिया के सारे मैचेस की रैंकिंग लेके आने वाले हैं। और सबसे मजे की बात है, ये सिर्फ मेरी रैंकिंग नहीं है, जैसे कि असली अखाड़ा पर आपको पता है हम दोनों होते हैं आयुष और मैं, तो हम दोनों के अलग अलग रैंकिंग्स होंगे। देखते हैं कैसे क्लैश करते हैं जितने भी रोमन रेंस के मैचेस हुए रेसलमेनिया 31 से लेकर रेसलमेनिया 39 तक। मेरे को क्या लगता है कौन सा मैच मेरा लीस्ट फेवरेट है या कौन सा सबसे फेवरेट है, और शायद आपको जो पुरानी मेमोरीज है वो भी याद आ जाएंगी। लेकिन आयुष, उससे पहले क्या हमको इस एपिसोड की शुरुआत करनी चाहिए एक्नॉलेज करके रोमन रेंस को, क्योंकि ये बिग डॉग वाले कैरेक्टर से ट्रांजिशन भी होगा ट्राइबल चीफ में, एंड आई थिंक रिस्पेक्ट पे करनी तो बनती है। क्या पता उनका इस रेन के अंदर ट्राइबल चीफ वाले ये लॉस भी आ जाए पहला।
भाई अलग ही इस समय रेसलमेनिया का एक्सपीरियंस रहने वाला है, बिकॉज ना ही सिर्फ नाइट वन पे बल्कि नाइट टू पे, दोनों नाइट्स पे रोमन रेंस कोडी रोड्स हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेंगे। और मतलब कुछ पता नहीं है होने का वाला है, WWE कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कर रही है ऐसा जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, जो एट द एंड हम कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स हो सकती है हिस्ट्री में। लेकिन रोमन की ये इनक्रेडिबल रेन रही है, भले ही हम एक सेकंड के लिए सोच लें कि ख़त्म होने वाली है रेसलमेनिया में, लेकिन तब भी इसको कोई डिनाई नहीं करेगा कि मॉडर्न एरा का सबसे बढ़िया गिमिक, सबसे बड़ा टाइटल रन है रोमन रेंस का। और जो पूरी पैंडेमिक एरा में WWE को संभाला, आई डोंट थिंक कि कोई और सुपरस्टार या फिर कोई और कैरेक्टर या कोई स्टोरी लाइन रोहित वो चीज़ कर पाती जो रोमन ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे वो फॉलो तो करो हमें, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले और रेसलमेनिया के बाद भी काफ़ी कुछ आने वाला है यहाँ असली अखाड़ा पे। सेथ रॉलिंस के ऊपर हम ऐसा सेम एपिसोड करेंगे, लेकिन आप लोग कॉमेंट्स में इस पॉडकास्ट के बताओ आप भी अपनी रैंकिंग कि कौन से रोमन रेंस के रेसलमेनिया के बेस्ट मैचेज हैं आपके हिसाब से, कौन से वर्स्ट हैं। और रोहित, 8 मैचेज हैं टोटल रोमन के, और हम इस तरीके से बोलेंगे कि हमारी लिस्ट भी लोगों को पता लग जाएगी और पता लग जाएगा कि हमारा फेवरेट और वर्स्ट मैच कौन सा था रोमन का। तो ये सब इतना मैंने इसलिए बोला ताकि रोमन क्या ये जो पहला 8th नंबर वाला मैच है, मैं रोहित पे लेके आ जाऊँ ये बात को और बोलूँ कि रोहित करेगा इसको स्टार्ट। भाई, हु इज़ योर नंबर 8th रोमन रेंस मैच, कौन सा मैच है यहाँ पर?
तो देखो, इस एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब ऐसा होगा कि अगर अब मैंने जैसे 8th पहले बताया है तो 7th वाला आयुष पहले बताएगा, ताकि ऐसा भी ना हो कि कोई चीटिंग करके अपनी रैंकिंग बदले। वैसे ऑब्वियसली नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी
ये IPL नहीं है भाई, यहाँ चीटिंग नहीं होती।
ओ भाई साहब, IPL पे शॉर्ट्स ले जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमको स्क्रिप्टेड स्पोर्ट पसंद है इसीलिए हम दोनों ही स्पोर्ट फॉलो करते हैं। और नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो मेरी लिस्ट में तो भाई आई थिंक ऑब्वियस भी है, लेकिन क्या पता आयुष, पता नहीं मैं आयुष से मैच होगा नहीं होगा ये क्यों सोच रहा हूँ इतना ही मेरी रैंकिंग है, जबकि मेरा तो है भाई ड्रू मैकइंटायर वाला मैच। और उसके पीछे बिल्कुल मेरा सिंपल सा रीज़न है, पहले ही दे देता हूँ, क्योंकि आयुष हो सकता है किसी और नेम के साथ आ जाए, मैच के साथ आ जाए, क्योंकि भाई वो ऐसा लगा मुझे हमेशा ही कि बस रोमन रेंस ल्यूकेमिया से वापस आए थे तो उनको रेसलमेनिया में बुक करना था, वो ड्रू मैकइंटायर के साथ मैच दे दिया, क्योंकि उस टाइम का रोमन रेंस और उस टाइम का ड्रू मैकइंटायर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे भाई ये ऐसे कैसे, मतलब ये तो सुनने में तो पेपर्स पे तो बढ़िया ही साउंड कर रहा है, लेकिन ये उतना था नहीं, बस मैच भी अच्छा नहीं था, मैं तो ये बोलूँगा।
आई थिंक कि ऑब्वियसली हमारी रैंकिंग, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि हमारी रैंकिंग बहुत सेम होगी, लेकिन अब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू करा तो मुझे लगता है हम कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अब ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि इस मैच से मेरा क्या सही है गलत है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये मेरा मैच किधर रैंक कर रहा है उससे रोहित को समझ आ जाएगा कि मेरे को ये मैच कैसा लगा था। लेकिन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो रोहित ने बहुत बार सुना हुआ है मेरे मुंह से पहले कि ये मैच मुझे पर्सनली आई हेट दिस मैच। एक तो जितना लंबा ये मैच चला, जितनी इसकी स्टोरी लाइन थी, और जो सारे क्राउड ने पूरे समय इसको बू किया, रेसलमेनिया 32 रोहित, रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच। ये मैच मैंने एक ही बार देखा और वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी जब रेसलमेनिया में लाइव देख रहा, तो उसके बाद ना कभी मन हुआ ना इच्छा हुई। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट, सिर्फ रोमन रेंस का नहीं, वन ऑफ द वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट्स एवर। और अरे भाई, और अब मुझे यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी ताकि अगर रोहित का ऊपर जा रहा है मैच काफ़ी, तब मैं अपने सारे पॉइंट्स वापस लेके आऊँगा। लेकिन नंबर 7 पे मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी यहाँ पे ऐसा लगता है। और ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा बिकॉज मुझे नहीं उम्मीद कि रोहित को ये मैच इतना बुरा लगा होगा। नंबर 7 पे आता है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच, ऑब्वियसली रेसलमेनिया 34, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज। अब ये वन ऑफ द बेटर मैचेस था अगर मैं बात करूँ रोमन और ब्रॉक का। ये मैं नहीं बोलूँगा रोहित कि ये बेकार था ये वो, और सरप्राइज भी था इसमें कि भाई ब्रॉक कैसे जीत गया, रोमन क्यों नहीं जीता फाइनली। लेकिन मतलब क्या भाई, क्यों ब्रॉक और रोमन क्यों? और ये ऐसा लग रहा था उस टाइम पे भाई नहीं करना मेन इवेंट, क्यों हो रहा है मेन इवेंट WWE जबरदस्ती क्यों बार बार, और कुछ है नहीं क्या इनके पास करने के लिए? और उस टाइम पे रोमन को भी लोग पसंद नहीं कर रहे, ब्रॉक को भी पसंद नहीं कर रहे, क्यों हो रहा था ये मैच? और क्या यहाँ पे हम एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं?
सबसे पहले तो मुझे लग रहा है मुझे पहले अपना एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मेरी रैंकिंग किस हिसाब से है। मेरी रैंकिंग इस हिसाब से है कि वो मैच ऑब्वियसली कैसा था और उसकी स्टोरी भी कैसी थी, क्योंकि वो मैच जब बनने जा रहा है, बन रहा है, तो उसमें कैसी फील आई, एंड ऑब्वियसली मैच कैसा था वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। लेकिन ये जो रोमन और लेसनर के रेसल में 34 मैच की बात करी तो ये मेरे नहीं है नंबर 7 पे। और जो मेरा नंबर 7 पर है तो आयुष को थोड़ा सा दिलासा मिल जाएगा, वो है रोमन रेंस और ट्रिपल एच वाला मैच, क्योंकि इस बात में आयुष से ज़्यादा अग्री करने के लिए और कुछ है भी नहीं। क्योंकि वो जो मैच है वो मतलब मेरी रैंकिंग में आई थिंक ये लास्ट में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये रोमन रेंस और ट्रिपल एच का मैच है, और उस टाइम पर जब इसकी तरफ बढ़ रहे थे तो एक जो इरिटेटिंग चीज़ थी आयुष वो था कि यार ये रोमन रेंस को ओवर दिखाने के लिए बस अथॉरिटी अथॉरिटी किए जा रहे हैं। बस कुल मिला के वो लग रहा था कि सारे ऑड्स जो है रोमन रेंस के अगेंस्ट कर दो और इस मैच को बना दो, और अगर ये मैच अच्छा डिलीवर कर देता तो फिर भी इसकी मेमोरीज़ बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन आयुष की बात से मैं अग्री करूँगा यहाँ पे कि जो रोमन और ट्रिपल एच वाला मैच है शायद वो लग सकता
मजे की बात थी। मजे की बात यहाँ पे ये थी कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस मैच से, भाई लोग देखना ही नहीं चाहते थे इस मेन इवेंट को। क्या रोहित ये वही रेसलमेनिया जब रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते थे? बिकॉज आई थिंक कि दिस वाज द वर्स्ट रोमन रेंस बिल्ड रेसलमेनिया के मैच की, क्योंकि हम 8 मैचेस की बात कर रहे हैं और इंटरेस्टेड ही नहीं था क्राउड भाई। AT&T स्टेडियम में 1,00,000 ऑलमोस्ट आ रहे हैं, कितने लोग रिकॉर्ड अटेंडेंस, और लोग बू कर रहे हैं भाई, बुलशिट चैंट हो रही है, आई डोंट नो क्या क्या चैंट हो रहा है, दिस इज़ बोरिंग। और ये रेसलमेनिया का मेन इवेंट चल रहा है, सबको पता है कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं, बस ख़त्म करो भाई मैच, लोग कह रहे हैं होगी बहुत 8 घंटे की रेसलमेनिया हो गई, अब ख़त्म करो, आई डोंट नो। लेकिन नंबर 8 और 7 में चलो एक तो सेम आया, और मैं भी ये बोल दूँ कि मेरी रैंकिंग इस हिसाब से कि हाउ आई रिमेंबर, मेरे को कैसे याद है मैच, मेरी कितनी मेमोरी में अच्छे से वो मैच फिट हुआ हुआ है, क्योंकि सारे मैच हमने वापस जाके तो अभी देखे नहीं। नंबर 6 पे गया रोहित,
ये किसको बताना? अच्छा मुझे बताना पहले। अच्छा तो एक पहले मैं बात एक क्लोज कर देता हूँ, रोमन रेंस और ट्रिपल एच वाला जो मैच है ये यही था कि शायद रॉयल रंबल में ही रोमन रेंस को चैंपियनशिप डिफेंड करनी थी, फिर ट्रिपल एच जीत गए थे, तो स्टोरी पहले से बता दी बहुत ऑब्वियस थी, इसीलिए लोग सच में जा भी रहे थे वहां से, तो ये बैड मेमोरी है बहुत सारे फैंस की उस मैच से। लेकिन नंबर 6 की बात हो रही है तो जो आयुष की नंबर 7 पर है वही मैच है मेरा यहाँ पर, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का। इस मैच से मेरी जो एक मेमोरी है वो है मेरा यूट्यूब का शुरू का टाइम, जब मैंने बोला था भाई रोमन ही जीतेगा, लेकिन वो एंड वाला मोमेंट फिर हम सबने देखा था कि कैसे ब्रॉक ने बेल्ट फेंक के मारे थी विंस के, क्योंकि शुरू से ही जो रिजल्ट है वो रोमन रेंस के फेवर में था लेकिन एंड में वो चेंज किया। तो इस मैच में भी कहानी यही थी भाई कि वही है जो आयुष ने बोल दिया यहाँ पे कि यार ऐसा लग रहा है रोमन रेंस को पुश कर रहे जानबूझ के। दूसरी बार था वो रोमन और लेसनर का मैच, क्योंकि इससे पहले भी वो हो चुका था, उसके ऊपर भी हम आएंगे अभी। तो ब्लड वाला मूवमेंट था वहाँ से, तो ठीक है मतलब रैंकिंग में थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, तो इतना ज़्यादा भी कुछ बुरा नहीं है जितना मैंने 2 मैचेस के बारे में बात की, बट मेरे लिए तो भाई
एक बात तो ऐसे है कि हम दोनों ने मिलकर जो बेबी फेस रोमन रेंस को लपेटा है यहाँ पे पहले ही सबसे वर्स्ट वाले मैचेस में डाल दिया है, वो ऑटोमेटिकली प्रूव करता है। और आई थिंक जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे लिस्ट थोड़ी थोड़ी हमारी सिमिलर होती जाएगी, और आई थिंक यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज मेरे नंबर 6 पे जो मैच आता है वो है जो नंबर रोहित का नंबर 8 पे था, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 35। सारे भाई रीजंस हैं, अब मैं ये तो बैठूंगा नहीं यहाँ बताने की 8 पे क्यों नहीं है या फिर 7 पे मैच क्यों नहीं है, क्योंकि वो मेरी रैंकिंग है। तो आप लोगों को अगर पसंद नहीं है तो आप अपने कमेंट कर सकते हो।
लेकिन आयुष मेरा एक सवाल जरूर रहेगा कि आखिर रोमन और ड्रू के मैच में ऐसा क्या है जो वो ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर वाले मैच से ऊपर है?
देखो भाई लिस्ट बनाने से पहले ही जब ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया था पॉडकास्ट का, हमने डिसाइड किया ट्रिपल एच वाला मैच तो ऑटोमेटिकली लास्ट पर था ही हमेशा से, तो मैंने रैंक में कंसिडर भी नहीं किया। लिस्ट मेरी नंबर 7 से स्टार्ट होती है एंड आई थिंक रेसलमेनिया 34 को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे को यही आता है बस, हाँ वो एक ट्विस्ट ज़रूर था कि रोमन जीता नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं चाहता था कि रोमन जीते। वो तो एक्सपेक्टेड था जस्ट लाइक रेसलमेनिया 32, पर हुआ नहीं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पसंद आया। रोमन वर्सेस ड्रू क्यों है नंबर 6 पे, अब उसका रीज़न ये है कि भाई आई थॉट कि ये कुछ अलग कर सकते हैं इस पॉइंट पे। मैच ठीक था, मैं नहीं बोलूँगा कि मैच बेकार था, लेकिन ऑब्वियस था उस पॉइंट पे कि WWE चाह रही है कि अब रोमन वापस आ गया है तो अब लोग उसको उस तरीके से पसंद करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ भी इतनी काम नहीं करी थी रोमन के लिए, लेकिन एक अटैम्प्ट ज़रूर था। और ये मैं रोहित कहना कि रोमन रेंस को और WWE दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, इसलिए इस मैच को मैं इतना हेट नहीं करता, बिकॉज वो मोमेंट ऐसी थी कि इसके बाद अगले साल रोमन ने रेसलमेनिया दोबारा मिस कर दी, इससे पहले वो काफ़ी टाइम तक थे नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही थी रोमन के अराउंड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए दिस इज़ नॉट द वर्स्ट मैच। लेकिन अब नंबर 5th पे हम आते हैं, थोड़ा सिलसिला चालू होगा, 6, 8, 7, 6 तो सेम ही है हमारे, ऊपर नीचे थे बस। नंबर 5 मुझे बताना है आई थिंक, और यहाँ पे है रेसलमेनिया 38, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आई डोंट नो भाई क्या है रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर, आधी लिस्ट तो यही है, लेकिन टाइटल यूनिफिकेशन, द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, क्लियरली ऐसा कुछ नहीं था और ये हाइप थी सिर्फ, विंस मैकमैन की खुद की ड्रीम थी ये करना, उन्होंने कर दिया उनकी भाई खुद की रेसलमेनिया। रोहित रोमन के जीतने के अलावा वो जो मोमेंट है, जो विजुअल है, आई डोंट थिंक इस पूरी चीज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद आया इसके बारे में।
तो ये आयुष की लिस्ट में नंबर 5 पर है और ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच आयुष, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ, खैर जैसा बोला ये विंस के नज़रों में होगा ग्रेटेस्ट मैच, लेकिन मेरे को इतना कोई, मैं डिसएग्रीमेंट में नहीं हूँ यहाँ पर आयुष के साथ, क्योंकि ये मैच यहाँ पे भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट मेरी रैंकिंग में अभी इस मैच का नंबर नहीं लगा है, ये शायद थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं होगा क्योंकि मुझे पता शायद जो मेरा इस नंबर पर नेम है वो इससे ऊपर है आयुष की लिस्ट में, और वो है रोमन रेंस और अंडरटेकर का मैच। अब ये वो मैच है जहाँ पे मैच, पहली बात तो सबसे बुरा मैच ही है, अगर आप मतलब अगर थोड़ा सा रख सकते हैं कि ट्रिपल एच और रोमन रेंज का जो मैच था जिसकी बेकार क्वालिटी वैसी उसकी थी, मतलब रेसलिंग क्वालिटी की बात हो रही है, वैसा ही ये वाला मैच भी था। और इसमें खैर ज़्यादा हम इतना कुछ नेगेटिव इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि रोमन रेंज को मैच कैरी करना चाहिए था, मुझे लगता है उनसे वो नहीं हुआ। अंडरटेकर तो भाई खुद ही कितने ज़्यादा परेशान थे, वो खुद कहते हैं कि वो इस मैच को याद नहीं करना चाहते, तो एक रीज़न है बस कि रोमन और अंडरटेकर का मैच था ये, क्योंकि अब अगर रोमन रेंस को देखोगे और ये सोचोगे उसने अंडरटेकर से लड़ा है तो वो बिग फील होगी, लेकिन उस पॉइंट पे जाके उसे फील करोगे तो वैसा कुछ था नहीं, तो इस वजह से मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर है।
नो होल्ड्स बार्ड भी था ये बाय द वे,
वो किसी को याद नहीं रखना वैसे।
तो नंबर 4 रोहित को पता नहीं लग रहा है, लेकिन रोहित अपनी रैंकिंग बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं मुंह अपना बंद रखूंगा क्योंकि मुझे पहले जानना है कि रोहित का नंबर 4 पे कौन है।
तो मेरा नंबर 4 पे वही है जो आयुष का इससे पहले था, और वो है रोमन रेंस और लेसनर का टाइटल यूनिफिकेशन वाला मैच। इस मैच में आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये, तो भाई मतलब उस टाइम अभी तो आई थिंक जो हमने अभी तक मैचेस बात किए हैं ये थोड़े पुराने वाले हैं, उस टाइम पे शायद ऑडियंस भी इतनी, मतलब अभी वाली जो शायद पता नहीं कितनी होंगी या फिर नहीं होंगी, तो भाई बताना कब से देख रहे हो, लेकिन ये वाला मैच ऐसा था कि बस टाइटल यूनिफिकेशन, अरे भाई लेसनर हार जाएगा कि जीत जाएगा लेसनर, मतलब ये वो मोमेंट था जहाँ से रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड बना था, तो वो आई थिंक एक बड़ी मेमोरी है रोमन रेंस के लिए यहाँ से और हम फैंस के लिए भी। बाकी एज सच कुछ खास था नहीं इसमें, सही बताऊँ आयुष, पॉल हेमन ने बोला बहुत था कि ये ऐसी स्टोरी होगी जिसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये और बेटर हो सकता था, बट क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार हो चुका था तो शायद फिर उसमें कुछ इतना मसाला बचा भी नहीं था।
और यहाँ पर अगर मैं अपना बोलूँ भाई नंबर 4, तो वही बात है, अब हमारी लिस्ट लगता है मेरे को सेम जाने वाली है, जितना हम चाहते हैं हमारी लड़ाई हो उतनी हो नहीं रही, लेकिन रोमन रेंस एंड द अंडरटेकर इज़ नंबर 4। और आई थिंक कि इस मैच से कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस तो थी भाई, लेकिन डिलीवर इसने कुछ किया नहीं। और अगर मैं याद करूं इस मैच के बारे में, तो ऑफिशियल डेड मैन गिमिक की रिटायरमेंट हमें दिखाई गई रोमन रेंस नाइट आफ्टर रेसलमेनिया के बाद, बिल्कुल डोमिनिक मिस्टीरियो वाली ट्रीटमेंट मिली थी, उनको कुछ बोलने नहीं दे रहे थे, और अंडरटेकर को ऐसा दिखाया कि भाई तू कौन है, इट्स माय यार्ड नाउ, और वो ना ज़बरदस्ती वाली बात थी, बिकॉज रोमन रेंस भी अंदर से ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, कि क्यों इस बंदे को रॉ में सबसे पहले बाहर भेजा जा रहा है भाई, उस चीज़ के बाद जो कोई पूरे रेसलिंग मतलब पूरे उस इंडस्ट्री में देखना नहीं चाहता। तो और ये सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया हुआ कि अंडरटेकर रेसलमेनिया में हार गए भाई, ब्रॉक के अगेंस्ट स्ट्रीक तो टूटी, पर रोमन भी वो बंदा बना जिसने एक और बार हरा दिया अंडरटेकर को, तो ऑलरेडी जो स्ट्रीक टूट चुकी थी उसकी भी औकात और गिरा दी। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मैं रोहित के भी पॉइंट से एग्री करता हूँ, यूनिफिकेशन मैच भी कुछ इतना खास नहीं था। अब टॉप 3 पे हम आ रहे हैं यहाँ पे, आई होप कि अलग हो, बिकॉज अगर ये सेम है तो आई डोंट नो फिर, लेकिन नंबर थ्री पे मैंने अपना जो मैच रखा है वो है लास्ट ईयर का मैच, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप रेसलमेनिया 39। आई डोंट थिंक उस मैच में कोई भी दिक्कत थी, आई डोंट थिंक उस मैच में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ आगे कि ये नंबर थ्री पे है। कंप्लेंट सिर्फ एक ही है कि कोडी को वो मैच जीतना चाहिए था और कोडी वो मैच कभी जीते नहीं, इसलिए रोहित मेरा मैच नंबर थ्री पे, इससे ऊपर मैं इसको लेके नहीं जा सकता हूँ।
तो अब यहाँ से मामला बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है क्योंकि मेरी लिस्ट में, पहले मैं इस मैच के बारे में तो कुछ बात करूँगा नहीं अभी, मेरी लिस्ट में जो नंबर थ्री पर मैच है वो आज से बहुत पहले वाला मैच है और रोमन रेंस के सिंगल्स मैचेस की जो हम बात करें, सबसे पहला ही मैच जो है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 31 वाला। अब मैं इसके पीछे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्योंकि पहले से ही दे देना चाहिए क्योंकि उसके बाद काउंटर में चीज़ें आएंगी तो फिर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है मामला। तो रोमन रेंस और लेसनर का मैच ये नंबर थ्री पर है मेरा, बहुत मस्त इसकी मेमोरीज है मेरी क्योंकि ये वो पहली बार था कि अरे रोमन रेंस जिसको WWE शील्ड का पावर हाउस बना के दिखा रही है, अब उसको आगे पुश करना है और उसके सामने ब्रॉक लेसनर है जो भी अभी स्ट्रीक तोड़ के आया है और ऐसा भी लग रहा था कि यार रोमन रेंस अब नेक्स्ट बंदा है तो क्या ये लेसनर को हरा देगा, फिर उसमें सेथ रॉलिंस का कैश इन भी है। तो तारीफ करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ये उन मैचेस में से जिसको रोमन रेंस के जब उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा ना उस तरीके से देखेंगे कि यार इसमें सब कुछ था, तड़का वगैरह भाई, मतलब एक तो वो रोमन भी बिल्कुल शुरुआत वाला था उस टाइम पे, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यार इसको ज्यादा ही बिल्कुल पुश कर रहे हैं यार, क्या बेबी फेस बना रहे हो। तो मेरे लिए नंबर थ्री पर है और आई थिंक अच्छा ही है, मतलब इससे ऊपर जो दो मैचेस है उसके लिए कुछ और कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे, इसलिए नंबर थ्री पर रहेगा मेरे लिए।
तो भाई नंबर टू भी बताना पड़ेगा बिकॉज मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं जो बोलना आगे इसके जो बोलने वाला हूँ वो डिपेंड करेगा कि रोहित का नंबर टू कौन है।
ओके, तो मेरी लिस्ट में जो नंबर टू वाला मैच है वो है रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन, मतलब अब तो अच्छे मैचेस ही हैं, आई थिंक नंबर वन पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्योंकि वो आई थिंक बहुत हद तक ऑब्वियस ही हो गया है। तो ये मैच भाई, ये तो अभी सभी नहीं देखा है पता है, क्योंकि यहाँ पे थ्री वे वाला एंगल था, डैनियल ब्रायन और वो रोमन रेंस की पुरानी हिस्ट्री भी आई थी, एज भी नया नया बंदा आया था उसको भी फिर आगे ऊपर टॉप के लिए रेस कर रहे थे, रोमन रेंस ने यहाँ पे स्टैक करके जो पिन किया था, रोमन रेंस ने दोनों को हरा दिया था तो वहाँ से वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया था कि भैया ये बंदा इतनी जल्दी हार नहीं सकता। तो मतलब अच्छी बातें ही हैं, सारी बुरी बातें हैं नहीं, इसलिए नंबर टू पर है मेरी।
भाई ऐसा लग रहा है कि नंबर वन वाला थोड़ा लंबा चलेगा, तो अगर आप सुन रहे हो 17 मिनट तक तो बैठो अभी अपनी सीट बेल्ट लगा के, बिकॉज मेरा नंबर टू पे आता है रेसलमेनिया 31 रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आई थिंक उस टाइम पे अगर हम बात करें जिस तरीके से ब्रॉक और रोमन की प्रेजेंटेशन थी, उससे बढ़िया मैच वो मेन इवेंट में दे नहीं सकते थे, और जबकि सारे लोग उस चीज़ को सेथ रॉलिंस के कैशन की वजह से याद रखते हैं, लेकिन अगर हम उस कैशन को हटा भी दें तो वो मैच लोग बहुत पसंद कर रहे थे, काफ़ी उनको मज़ा आ रहा था उस मैच के अंदर और लोग भी इंजॉय कर रहे थे, जिस हिसाब से स्टोरी लाइन दिखाई जा रही थी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस को कुछ उस मेन इवेंट लेवल तक WWE लेके गई है एज अ सिंगल सुपरस्टार और वो डिलीवर भी कर पाए थे। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ उनको बाकी सारी रेसलमेनिया में, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जब WWE ने उस चीज़ को एक्चुअली कैप्चर कर पाया, ऑडियंस के साथ वो रिलेट कर पाया और मैच में डिलीवर किया। ऑब्वियसली सेथ वाली चीज़ ने इस पर चार चांद लगा दिया, लेकिन नंबर वन भाई मैं क्या बोलूं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जितना मर्जी कोडी रोड्स ने कुछ भी किया हो भाई, जितना मर्जी स्टोरी हो रही है फिनिश करना वाली बात चल रही हो, रोमन रेंस एज डैनियल ब्रायन मेरे हिसाब से क्या सिनेमा मैच था, क्या स्टोरी लाइन थी, बिकॉज इंडिविजुअली दोनों से बैटल करने के बावजूद भी अब दोनों इकट्ठे खड़े हो गए हैं सामने आ गए, और रोमन रेंस को उन दोनों को, और मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ भाई जहाँ पर मुझे मौका मिलता है कि स्टैक या स्मैश स्टैक एंड पिन, ये उन्होंने बोला ये उन्होंने करा और बिल्कुल वैसे ही रोमन रेंस ने एंड करी रेसलमेनिया जैसे उन्होंने अपने प्रोमो में बोला था, एंड दिस इज़ माय नंबर वन रोमन रेंस का आज तक का फेवरेट मेरा रेसलमेनिया मैच फ्रॉम रेसलमेनिया 37 ट्रिपल थ्रेट। आई डोंट थिंक रोहित को कोई डिसएग्री करने का है, लेकिन मैं रोहित से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा दिख गया रेसलमेनिया 39 में, मतलब आई नीड एन एक्सप्लेनेशन।
सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी मुश्किल सिचुएशन में आगे क्यों आ गया हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रेस किया है रोमन रेंस है जो डैनियल ब्रायन के मैच को, लेकिन अब लग रहा है मुझे इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें गिनानी पड़ेंगी रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में। सबसे पहले तो देखो यार मैच किसका कौन फेवरेट है वो सब्जेक्टिव रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा भाई नीचे स्पॉटिफाई में ना बताना आपका भी कौन सा मैच है, फिर हम भी पढ़ेंगे देखते हैं ऑडियंस या फिर हमको सुनने वाले दर्शकों का क्या मानना है। तो मेरी नज़र में देखो ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस एज वर्सेज डैनियल ब्रायन के मैच से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हो गया रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में, क्योंकि जो चीज़ें आयुष ने रोमन और एज और ब्रायन के मैच तारीफ करने से पहले वो मैंने आयुष से पहले ही बोल दी, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो मैच था ये वो मोमेंट था जो कि बहुत सारे लोगों की नज़र में ये एंड था रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले रेन का, क्योंकि कोडी रोड्स आए थे तो भाई ये बंदा आया है, इसने ब्रॉक लेस्नर को हरा दिया, इसने उस समय तो सेथ रॉलिंस को ही हराया था और फिर रॉयल रंबल जीत गए थे, तो एक ऐसा फॉर्मेट ऐसा सिनेरियो बिल्कुल सेट हुआ था कि यहां से तो कोई चांस ही नहीं था कि रोमन रेंस स्टिल चैंपियनशिप को रिटेन कर ले। तो एक तो वो बहुत बड़ा शॉकिंग एलिमेंट था और मैंने एंटिसिपेट किया था, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ये मान के बैठा था कि कोडी रोड्स यहां पे जीतने वाले हैं। और उसके बाद ये जो कोडी रोड्स को जिस तरीके से बेबीफेस वाली बुकिंग में दिखाया, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार कोई ऐसा बंदा, मतलब सबसे पहले तो बहुत सारे लोग कोडी रोड्स को इसीलिए साइड कर देते हैं भाई ये बंदा इतना चौड़ा थोड़ी दिखता है, भले ही हाइट है लेकिन चौड़ा कहाँ है, लेकिन कोडी रोड्स ने वो फील दिलवाया था, वो फ्रेश बेबीफेस वाली पूरी वाइब आ रही थी कोडी रोड्स से जब वो रोमन रेंस के सामने खड़े थे, और जो सपोर्ट है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो कोडी रोड्स ने फैंस की तरफ से लिया था, तो वो मुझे स्टोरी पसंद आई थी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही, मैं ये कह रहा हूँ कि रोमन एज और डैनियल ब्रायन की स्टोरी से बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर आप रोमन और एज ब्रायन की स्टोरी भी देखोगे तो हर किसी का अलग अलग है। पहले तो कैसे ट्रिपल थ्रेट मैच में इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि डैनियल ब्रायन भी शुरू में थे नहीं इस मैच के अंदर, एज को उन्होंने परेशान किया, मतलब मल्टी एंगल स्टोरी थी ये, तो उसकी अपनी एक खास बात है। लेकिन इस मैच के फिनिश की वजह से और स्पेशली जैसा वो रेसलमेनिया का मैच था उसकी वजह से, ब्लड लाइन के रोल की वजह से, सब्जेक्टिव है बट स्टिल मेरे लिए तो ये नंबर वन पर ही, और थोड़ा मुझे भी वियर्ड लग रहा है ऐसा कैसा मैच है कि भाई इतने सारे रोमन रेंस के मैच हो गए पिछले साल का मुझे पसंद आ रहा है, ऐसा लग सकता है भाई शायद इसने देखा ही अभी है, लेकिन मेरी नज़र में तो भाई ये मैच है। और मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा कि पहला मैच आयुष ने एक्यू डाल दिया, ठीक है, मतलब मेरे लिए भी हो सकता था कि मैंने बस शफल किया और ये निकाला, बट मेरे लिए रोमन और कोडी वाला मैच है
भाई। मैंने तो जब देखा सिंपल सी बात थी, अगर कोडी ने रोमन को हराया होता तो वो मैच मेरे लिए नंबर वन पे हो जाता ऑटोमेटिकली, लेकिन क्योंकि मेरे को याद है कि मैं कितना दुख से गुजरा हूँ जब मैंने देखा वो पिन होते हुए कोडी रोड्स के चेहरे को, और उसके बाद रोमन रेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेसलमेनिया ख़त्म हो गई और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर आंसर्स। लेकिन रोहित मजे की बात यह है कि 8 रोमन रेंस के मैच थे, लेकिन रोमन का जिस हिसाब से रेसलमेनिया का ट्रैक रहा है ना, ये लिस्ट बनानी बहुत आसान है। आधे मैच तो ब्रॉक लेसनर के साथ हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि भाई जो सारे उनके नए ट्राइबल चीफ वाले मैचेस हैं वो ऊपर ही आने वाले हैं और पुराने मैचेस पीछे जाने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार हो जाएगी जब हम सेथ रॉलिंस के बारे में एग्जैक्टली सेम एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि ना ही सिर्फ सेथ रॉलिंस का गेमिक जो है इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन उनके सारी स्टोरी लाइन और सारे रेसलिंग मैचेस जो मेनिया में आए हैं मोस्टली हमें बहुत अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। जो वेरिएशन होगी आई थिंक रोहित उस लिस्ट में काफ़ी बड़ी होने वाली है एज़ कम्पेयर टू रोमन।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्पॉटिफाई पे फॉलो करके रखना पड़ेगा और रेट भी कर देना, नोटिफिकेशंस भाई आ जाते हैं एपिसोड्स के, इसलिए फॉलो करोगे तो आपका फायदा रहेगा। बाकी मेनिया तक ऐसे एपिसोड्स आने वाले हैं उसके बाद भी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।